प्यारे बाप दादा के अति लाडली और मीठी मीठी माताओं को ओम शांति, गुड इवनिंग। प्यारे बाबा ने माताओं को निमित्त बनाकर अपना कार्य आरंभ किया। बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान पंडित, वैज्ञानिक, राजनेताएं, अभिनेताएं संसार में हैं, लेकिन बाबा ने अपने कार्य के लिए माताओं को विशेष चुना और निमित्त बनाया। किन विशेषताओं के कारण बाबा ने आपको निमित्त बनाया, वो विशेषताएं बुद्धि में याद हैं? कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण भगवान भी माताओं को प्यार करते हैं, वंदन करते हैं, निमित्त बनाते हैं? क्या विशेषताएं? समर्पणता का विशेष गुण है और त्याग, सहनशीलता, वात्सल्य, सेवा भाव, तपस्या, क्या बोल रहे, सुनने में नहीं आ रहा, भोली माताएं और त्याग की मूर्ति है, समाने की शक्तियां। इन सब विशेषताओं के कारण बाबा ने माताओं को निमित्त बनाया। तो हमें सदा अपने आप में ये देखते रहना है कि जिन विशेषताओं के कारण बाबा ने हमें चुना है, निमित्त बनाया है, प्रैक्टिकल में वो विशेषता हमारे में है। ये स्व चेकिंग हमें अपने में करना है कि सचमुच ही हमारे में समर्पण मयता है। और अब हमारे सामने दो जहां हैं, केवल लौकिक नहीं लेकिन अलौकिक परिवार भी हैं, केवल अपने पति बच्चे नहीं लेकिन बाबा और बाबा के बच्चे भी हैं। तो दो क्षेत्र है, दो संसार हमारे सामने हैं। तो व्यक्तिगत मुझे अपने आप में ये देखना है कि वो समर्पणता का गुण सचमुच मेरे में है, सहनशीलता है। कभी कभी तो कई कहते हैं कि मेरे में सहनशीलता नहीं है, तो फिर कैसे कहेंगे कि बाबा ने हमारे इस गुण को देखकर हमें निमित्त बनाया। त्याग, स्वार्पण, वात्सल्य, लाज, सतीत्व, ये सब विशेष गुण हैं। तो हम अपनी जीवन के अंदर प्रैक्टिकल में ये देखते रहे कि ये गुण मेरे अंदर हैं और सर्वगुण संपन्न हमें बनना है। लक्ष्य तो हमारा है सर्वगुण संपन्न बनना, लेकिन एटलीस्ट जिन गुणों के कारण बाबा ने मुझे चुना है वो गुण तो मेरे में हो ही। इसलिए और गुणों का चार्ट तो भले रखें, लेकिन पर्टिकुलर इन गुणों का चार्ट मुझे जरूर रखना है कि इस गुण के कारण बाबा ने हमें निमित्त बनाया, हमारे में विश्वास रखा। क्योंकि माताओं की ये विशेषता है कि एक बार जिससे जीवन जोड़ती है अंत तक उसे निभाती है। तो बाबा को भी माताओं में ये विश्वास हुआ कि ये मुझे पहचान लेगी और मेरे से संबंध जोड़ देगी, फिर कुछ भी हो जाए लेकिन उस संबंध को छोड़ेगी नहीं। और ये बात सही है। और दूसरी बात कि एक बार जिसको हम अपना दिल दे देते हैं, कुछ भी हो जाए वापस नहीं लेते, तो इस विशेषता को भी बाबा ने देखा कि ये मेरे से मन लगा देगी, फिर कितने भी कारण बन जाएंगे लेकिन अपने मन को वापस नहीं लेगी, लगा के रखेगी, वफादारी उसके संबंध में रहेगी। तो एक बात हमें अपने चार्ट में सदा ये देखना है, और दूसरी बात हमें ड्रामा के चक्र के पार्ट की टोटल हमें याद रहे कि द्वापर युग से कौन सी कमजोरियां हमारी रही, जो हम जो देवियां थी, शक्तियां थी, वो हमारा गिरना कैसे हुआ, क्या कारण बने, एक साधारण नारी बन जाने के पीछे कौन सी कमजोरियां विशेष कारण रूप बने, कैसे हमारा स्वमान खत्म कर दिया गया और माताओं को गुलाम बना दिया गया, दासी समझा गया, वो कौन से कारण बने, जहां से हमारी शक्तियां बह गई, दिव्यता चली गई और हम साधारण बन गए, वो कमजोरियां कौन सी है जो पर्टिकुलर बहनों के अंदर है, मर्यादाएं तोड़ी। और वही मुख्य मर्यादा पर्टिकुलर बहनों के लिए वो गई हुई कमजोरियां कौन सी, वो तो ओवरऑल कारण है। हाँ खोजो जल्दी जल्दी। हाँ मोह का कारण, मोह जल्दी अटैच हो जाते हैं। और हाँ और कौन सी कमजोरियां जो लौकिक दुनिया वाले भी कहते हैं ये बहनों में ज्यादा है, ईर्ष्या। लोग तो क्या क्या बोलते, रोने की ईर्ष्या, रोने की। और हाँ वो विशेषता है या कमजोरी है, हाँ बहनों के लिए खास कहते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं, बैलेंस नहीं है। और भाई, भाई सही बात है, डर जल्दी लगता है। डर क्यों लगता है, पहली कमजोरी कौन सी, नाजुक है, कमजोर है, अंदर से कोमल है, इसलिए भाई जल्दी लगता है। हाँ लोकलाज, राइट लोकलाज। अभी और कमजोरी रह गई है, लोग कहते हैं कि ये अगर चार पांच इकट्ठे होंगे तो ये होगा ही वहां। तेरी मेरी पर चिंतन निंदा ग्लानी तो ये कमजोरियां हैं जिसने ड्रामा में बहनों को डाउन किया, गिराया। क्या हमारा नाम मान शान था और इन कमजोरियों के कारण हम साधारण बन गए, बल्कि लोगों ने और ही गुलाम बना दिया, वश कर दिया। और एक बात रह गई है, खास वो बहनों का ही डिपार्टमेंट है, फैशन, देह श्रृंगार। क्योंकि बाबा साकार में जब थे तो बाबा से किसी ने पूछा कि आप अपनी बहनों को क्यों नहीं तिलक करने के लिए कहते, क्यों नहीं कान में नाक में गले में कुछ पहनने के लिए कहते। तो बाबा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, क्योंकि शुरू में यज्ञ का इतिहास आप सबको पता होगा। अभी मैं समझती हूँ एक डेढ़ मास के मुरली के बीच में ही आया था कि बाबा ने शुरू में कहा था कि बाल खुले रखो, चोटी नहीं बनानी है, क्योंकि चोटी बनाने से वो एहसास आता है कि मैं स्त्री हूं, है ना। तो बाबा कहते थे कि तुम तपस्विनी हो, तुम्हारे बाल खुले हो, जब तक स्वराज्य स्थापन न हो तुम चोटी नहीं बनाएंगे। तो बाबा ने उसको उत्तर दिया कि देखो, कोई भी गाय है, भैंस है, बैल है, उस जानवर को वश करना हो तो क्या करते, उसके नाक से गले से रस्सियां बांधते हैं ना, और उससे वो कंट्रोल में आ जाते। तो ये रॉयल रस्सियां है, नाक में, कान में, गले में, हाथ में कितनी रस्सियां डालते। बहने नाजुक है इसलिए वो मोटी रस्सी तो नहीं बांध सकते ना, तो ये रॉयल रस्सियां डालते। जब कोई स्त्री किसी पुरुष की बनानी है तो विधि भी क्या होती है, उनके तरफ से जो तिलक कंगन भेजा जाता है वो आप स्वीकार करते हैं, है ना। माना अब आप उनके अंदर है, उनके बन गए। तो बाबा ने कहा कि ये रॉयल रस्सियां हैं, इसलिए हम ये नहीं पहनाते हैं, क्योंकि हम माताओं को शक्ति अवतार बनाते हैं। तो फैशन, देह श्रृंगार, देह प्रदर्शन, केश श्रृंगार ये आजकल अति में जा रहा है, इन चीजों ने हमें साधारण और बॉडी कॉन्शियस बनाए। इसलिए ये दोनों चीजें सदा हमारी बुद्धि में रहे कि कौन से कारण बने ड्रामा में जो बहनों का गिरना हुआ, वो कमजोरियां अब मेरे अंदर ना हो, और कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण बाबा ने हमें निमित्त बनाया, जिम्मेवारी दी, वो विशेषताएं मेरे में हो ही हो। ये दो अटेंशन हमें अपने जीवन के अंदर रखना है। और मुझे ये भी याद है, विनोबा भावे ने अपनी एक किताब में लिखा है कि जब तक भारत की माताएं प्रखर वैरागिणी और तपस्विनी नहीं बनेगी, तब तक भारत का परिवर्तन नहीं हो सकता। और ये बात बिल्कुल सही है कि माताओं के अंदर जब प्रखर वैराग्य है और शक्तिशाली त्याग और तपस्या है, तो हमारे द्वारा हम अनेकों का कल्याण कर सकते हैं, विश्व परिवर्तन के लिए। इसलिए बाबा ने माताओं को निमित्त बनाया और उसके अंदर ये वैराग्य, त्याग और तपस्या की शक्ति भरी। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी उसमें दिया था कि एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे और उसके कंपार्टमेंट में कई लेडीज भी थी। एक स्टेशन आया जहां गाड़ी रुकी और उस स्टेशन पर बहुत सुंदर फूलों के हार मिल रहे थे जो बहनें बालों में लगाती हैं। तो सब लेडीज ने वो फूल के हार खरीद के अपने बालों में लगा लिए। उस समय विनोबा भावे कुछ भी नहीं बोले, गाड़ी आगे चली, फिर विनोबा भावे ने एक बहन से पूछा कि आप सबने जो बालों में ये फूलों के हार लगाए हैं क्या वो आपको दिखाई देते हैं? हाँ भाई, फूलों की वो लगाते हैं ना, क्या वो आपको दिखाई देते हैं? तो उसने कहा कि नहीं। तो बोला किसको दिखाने के लिए लगाए हैं फिर? जरूर ये चीजें दूसरों को दिखाने के लिए हम लगाते हैं। हम खुद तो बॉडी कॉन्शियस बनते हैं लेकिन दूसरे का देह के प्रति हम ध्यान खींचवाते हैं, माना दूसरे को भी बॉडी कॉन्शियस बनाते हैं। इसलिए बाबा ने हमें सिंपल, ब्यूटीफुल और बीच का बताया है ना, अति ऊंचा न अति नीचा। बाबा सदा कहते हैं कि तुम संगम युग में हो, मिडल, मध्य में, दो युग के बीच में हो। इसलिए सिंपल और ब्यूटीफुल ऐसा हमें जीवन को जीना है। इसलिए हमारा आहार विहार व्यवहार, हमारा पहनावा, ये सब सादा सरल और सात्विक। भले ये चीजें बाह्य हैं लेकिन मन की स्थिति पर प्रभाव डालने वाली चीजें। और अगर हम सबका ये लक्ष्य है कि हमें योगी बनना है और मन मुझे एक बाबा में लगाना है, तो मेरा आहार विहार व्यवहार, मेरा संग, मेरा पहनावा उस प्रकार का सात्विक होना चाहिए ताकि सरल मन मेरा बाबा में लगे और ज्यादा रस और स्वाद में चीजों में पदार्थों में भटके नहीं। तो आज हमें जो टॉपिक दिया गया है, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, अगर हम बाबा के ज्ञान को गहराई से समझे हैं तो मैं समझती हूं कि अब इस कलयुग के अंत समय जीवन की, संबंधों की और संसार की वो स्थिति आकर के बनी है जिस समय उसमें मोह करने जैसा कुछ है ही नहीं। है क्या? हर एक ने हर व्यक्ति का, हर संबंध का और संसार की हर चीजों का अनुभव कर लिया है कि उसमें कोई सुख और कल्याण नहीं है जो हम मन लगाएं। क्यों बाबा हमें 84 जन्मों का इतिहास बताते हैं? 63 जन्मों का अनुभव हमें है कि हमने देह में, देह संबंधों में, दुनियादारी में, दैहिक वैभव पदार्थों में मन लगाकर क्या प्राप्त की, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। चलो द्वापर युग से ही हम गिनती करें, हमने देह में, देह संबंधों में, दुनियादारी में, दैहिक वैभव पदार्थों में मन लगाया, उसी में हम रचे हुए थे, उसी में हम आसक्त थे, लेकिन उसका रिजल्ट हमें क्या मिला? गिरती कला, जिसको बाबा कहते हैं ताज गया, तख्त गया, तिलक भी गया, है ना। जो कुछ हमारे पास था, श्रेष्ठ स्मृति थी, श्रेष्ठ भाग्य था और श्रेष्ठ प्राप्तियां थी, वो सब कुछ हमने गंवा दिया ना। तो अगर हम चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखते हैं, 84 के चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखते हैं और पर्टिकुलर द्वापर और कलयुग के 63 जन्मों का इतिहास बुद्धि में रखें कि वहां मन लगाने से कोई फायदा नहीं। हम साधारण बन गए, देहभान में आ गए, दुखी और अशांत हो गए। इसलिए अगर ज्ञान की दृष्टि से आप संसार की वास्तविकता को देखेंगे तो मन लगाने जैसा कुछ है नहीं, है ना? जो कुछ है असत्य है, असार है, अयथार्थ है। इसलिए जितना ज्ञान को विस्तार से और गहराई से हम समझते हैं उतना हमारे विवेक की जागृति होती है। केवल अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे हम आकर्षित नहीं हो जाएंगे, मोहित नहीं हो जाएंगे। इसलिए अगर हम ज्ञानी तो आत्मा बनते, जैसे आप सबने कहा कि माताएं इमोशनल ज्यादा होती है, मीन्स भावनात्मक ज्यादा होती है, लेकिन बाबा ने हमें अब ज्ञानी तो आत्मा बनाया। केवल भावना से जीवन को नहीं जी सकते हैं, विवेक भी जीवन में चाहिए। इसलिए बाबा ने हमें शुरू से अलौकिक जन्म के अंदर ज्ञान की पालना की। रोज बाबा हमें क्या देते हैं? पढ़ाई कराते हैं, ज्ञान सुनाते। क्यों बाबा हमें इतनी समझ देते हैं? क्यों बाबा हमें ज्ञान का इतना विस्तार और इतनी गहराई समझाते हैं? क्योंकि ज्ञान हमें सही समझ देता है, और जितना सही ज्ञान सही समझ हमारी बुद्धि में है उतना आपको अंतर से वैराग्य उत्पन्न होगा। जीवन में सबसे जरूरी है वैराग्य। गीता के अंदर आपने पढ़ा होगा, गीता में स्पष्ट बताया है कि सभी पापों का मूल दो कारण है, राग और द्वेष। राग के कारण हम उस व्यक्ति में या उस पदार्थ में या उस घटना में उस बात के प्रति केंद्रित और सीमित हो जाते हैं, इसलिए हमारे ज्ञान की विशालता नहीं रहेगी। जैसे ही आप राग से मुक्त होंगे, कोई भी अटैचमेंट नहीं रहेगा, हमारी बुद्धि बेहद में चली जाएगी और हमें बेहद का ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए फाउंडेशन केवल भावना का नहीं लेकिन ज्ञान और सद्विवेक का चाहिए। और ज्ञान ही वो बल है, ज्ञान ही वो शक्ति है जो हमें पावरफुल बनाती। इसलिए बेशक हम प्यार से चले, ये मैं जरूर कहूंगी कि बाबा के ज्ञान को समझने के बाद, ज्ञान से सत्य को पहचानने के बाद, क्योंकि जैसे ही आप ज्ञान समझेंगे आपकी बुद्धि में दोनों बातें क्लियर हो जाएगी कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, वास्तविक क्या है, ब्रह्म क्या है, प्राप्ति किस में है, नुकसान किस में है, सार क्या है, असार क्या है, ये सब बातें स्पष्ट हो जाती। और वो स्पष्ट होने के बाद जो कुछ असार है, असत्य है, ब्रह्म है, गलत है, तो उससे हमें अपने आप को न्यारा कर देना, उसको वैराग्य कहते। वैराग्य किसको कहा जाता? दुख से त्याग नहीं होता, दुख से वैराग्य नहीं आता, वैराग्य आएगा ज्ञान से समझ। आपने कई बहनों माताओं के जीवन देखे होंगे, एक बार शादी की, दो बार की, तीन बार की, दुखी होते हैं फिर भी वो ज्ञान में आना नहीं चाहते। अभी तक उनको वैराग्य नहीं, उनका बुद्धि का लंगर वहां से उठता नहीं। जबकि बाबा के बच्चों के कईयों के जीवन आप देखते हैं कि उनको सब कुछ लौकिक रूप से सुख है, पति बच्चे भी अच्छे हैं, धन साधन भी अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन सही ज्ञान के कारण अंदर से उपराम, दिल से वैराग्य। तो एक बात सदा हम ये समझ ले कि ज्ञान से, दुख से संसार का त्याग नहीं हो सकता है, ज्ञान से ही हो सकता है। सही ज्ञान नहीं है इसलिए आपस में लड़ते भी रहते हैं, दुखी भी होते रहते हैं और उसी में लगे भी रहते हैं, छोड़ते भी नहीं। और जिसके अंदर सही ज्ञान है उसको भल सब प्रकार का सुख भी है, सभी प्यार भी कर रहे हैं, मान भी दे रहे हैं, लेकिन वो अंदर से कहीं नहीं जुड़ रहे हैं। ये है शक्ति। तो रियल स्थिति ये होनी चाहिए। इसलिए पढ़ाई का शौक हो माताओं को कि बाबा की मुरली का गहन अध्ययन करें, हम ज्ञानामृत पढ़े, बाबा के ज्ञान की किताबें पढ़े, अपने अनुभवी टीचर बहनों से, बड़े भाई बहनों से सदा हम गहराई प्राप्त करते रहे। तो जितना ज्ञान का बेस, फाउंडेशन गहरा और विस्तार का होगा उतना अंदर से वैराग्य। और वैराग्य का अर्थ आपने समझा ना कि वैराग्य माना किसी से नफरत घृणा नहीं। जैसे हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा हो, अनबन हो, तो हम कहते मेरा तो मन ही उठ गया, मुझे उनसे बात करने का भी दिल नहीं करता है, वो वैराग्य नहीं है, वो वैराग्य नहीं है। क्योंकि जब आपको सुख मिलेगा, प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो फिर आप वहां अटैच होने लगेंगे। इसलिए वैराग्य का अर्थ ही ये है कि जो कुछ गलत है उससे न्यारा हो जाए, तब हमारी आसक्ति समाप्त होती है। और वो अंदरूनी वैराग्य फिर त्याग सहज बना देगा। फिर जो कुछ बुराइयां, कमजोरियां, अवगुण हमें छोड़ने हैं वो त्याग हम सहज कर सकेंगे। या बाबा ने जो नियम मर्यादाएं हमें बताई हैं, उस नियम मर्यादा के चाहे व्यर्थ बातें सुनने का त्याग, वो भी एक रस है, वो भी एक रस है, निंदा रस कहा जाता है। इंसान समझते हुए भी सुनने का इंटरेस्ट रखता है। हम कहते हैं ना कि मैं तो अपने घर में ही बैठी थी, वो आकर के मुझे सुना के गए, क्या करे, मेरे पास आते हैं और मुझे बता के जाते, पर आपको ही क्यों बता के जाते? हाँ, जरूर मुझे सुनने का इंटरेस्ट है तब तो बता के जाते हैं, है ना? जो बात सुनकर आप कुछ अच्छा करते नहीं है वो सुनना क्या कहा जाएगा? हाँ, वेस्ट, व्यर्थ कहा जाएगा। जो बात सुनकर, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक परिवार की, कोई भी ऊपर नीचे आए, कमी पेशी की बातें आप सुनते हैं और सुन करके पॉजिटिवली अच्छा कुछ नहीं करते हैं, उसका निराकरण नहीं करते हैं, तो वो सुनना क्या कहा जाएगा? वेस्ट टाइम, एनर्जी, सब वेस्ट किया था। इसलिए हाँ, मैं निमित्त हूँ, जिम्मेवार हूँ, तो मुझे सुनना भी पड़े और समाधान देना भी पड़े। लेकिन जहां तक मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं यज्ञ के तरफ से निमित्त नहीं हूँ और मैं सुनकर कुछ करने वाली नहीं हूँ या कर सकती नहीं हूँ, तो मुझे वो नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो वो रस कहा जाएगा कि मुझे सुनने का, व्यर्थ जानने का इंटरेस्ट है। इसलिए लोकलाज, आसुरी लोकलाज, आसुरी कुल मर्यादा का त्याग और दूसरा इन व्यर्थ बातों का त्याग, सोचना और वर्णन करना दोनों उसमें आ जाते हैं, उनसे परे वो भी हम सहज कर सके, क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन ज्ञान की गहराई होने के कारण आपको ये सदा इतना गहरा महसूस होता रहेगा कि अब हम कौन हैं। हम साधारण स्त्रियां नहीं हैं, हम योगी आत्माएं हैं, हम ज्ञानी त्यु आत्माएं हैं, हम अलौकिक हैं। अगर ये मुझे रियलाइजेशन है तो कभी भी व्यर्थ में मेरा समय जाएगा नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे इसमें इंटरेस्ट आएगा नहीं, और मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा बनेगा कि कोई मेरे से ऐसी बात करेगा ही नहीं। तो ये जो सारे व्यर्थ के अटैचमेंट है वो सब निकलते जाते, क्योंकि योगी जीवन की पहली शर्त है डिटैचमेंट। अगर हमने जीवन का योग मार्ग अपनाया है ना, कहते दो मार्ग है, एक है भोग मार्ग, एक है योग मार्ग, हमने जीवन के योग मार्ग को अपनाया है तो योगी जीवन की पहली धारणा है डिटैचमेंट। इसलिए योगी को सदा कमल पुष्प पर दिखाते डिटैचमेंट। हमारा पहला अभ्यास ही है देह से डिटैचमेंट, देहभान से न्यारा। तो अगर हम देह के संबंध में कोमल हैं, नाजुक हैं, शरीर के नाम रूप के कॉन्शियस है, क्योंकि ये फैशन, श्रृंगार, नेचर से नाजुक होना, ये सब बॉडी कॉन्शियस बनाने वाली चीजें हैं। बिल्कुल नॉर्मल चीज आप परख सकते हैं कि जिस दिन हम कोई अच्छी नई साड़ी पहनते हैं तो हम दो बार ज्यादा आईने में देखते हैं। सिंपल सा परखने का प्रमाण, रोज जो कपड़े पहनेंगे उसमें हम इतना नहीं देखेंगे, जिस दिन हम थोड़ा वो पहनेंगे तो हम चार बार ज्यादा देखेंगे। तो वो हमें देह से अटैच बनाता है। बेशक बाबा ने हमें ये नहीं कहा है कि हमें कोई गंदा, मैला घैला, अव्यवस्थित रहना, हम स्वच्छ व्यवस्थित रहे, लेकिन बॉडी कॉन्शियस बनने वाली बात ना हो, उसमें स्वच्छता और व्यवस्थितता की बात हो। देह भान में आने वाली बॉडी कॉन्शियस बनने वाली बात ना, तो ये फैशन, श्रृंगार और नाजुक बना, कोई छोटी सी बीमारी हो और उसकी हम बड़ी कर दे। नेचर से नाजुक होते हैं तो क्या होता है, शरीर से बीमार पड़ेंगे लेकिन मन से भी बीमार हो जाते हैं। और कई शक्तिशाली होते हैं, बाबा कहते ठीक है शरीर को बीमारी है हम दवाई करें। तीन चीज बाबा कहते हैं, दवा, दुआ और योग। इन तीन से हम अपने कर्म भोग को चुकाएं, लेकिन उसके कारण मन नाजुक हो जाए, बीमारी छोटी होगी लेकिन मन की नाजुकता के कारण हम उसकी कॉन्शियस बन जाते हैं और दूसरों को भी भारी कर देते। तो ये सब चीजें शरीर में फंसाने वाली है, अटैचमेंट की बातें। रस और स्वाद, ये भी हमें देह से अटैच करने वाली, हम ठीक ही बना के खाएं। अब तो हम बाबा को भी भोग लगाते हैं तो बहुत स्वच्छ, सात्विक और पवित्र भोजन बनाते हैं, लेकिन जितना अगर हमें हबच है खाने पीने की, रस और स्वाद की, तो ये सारी चीजें हमें बॉडी कॉन्शियस बनाने वाली। तो क्यों बाबा ने अन्न शुद्धि कही, क्यों बाबा ने हमें सफेद ड्रेस पहनाया, क्यों बाबा ने हमें सिंपल लाइफस्टाइल कही, इसलिए कि हम न्यारा रह सके। दूसरा है देह संबंध, जिसमें हमारा मोह आसक्ति रहती, क्योंकि जब तक आत्मा कमजोर है इन संबंधों के आधार से खुद को सुरक्षित समझते, भी मेरे पति है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, भाई है, तो अंदर से एक आधार बना के हम चलते। इसलिए मन बहुत सूक्ष्म में वहां अटैच और डिपेंडेंट होने लगता है, आधारित होने लगता है। यहां चाहिए कि मुझे सर्व संबंध एक बाप से जोड़ना है, एक बाबा दूसरा न कोई, ये मुझे अंदर से पक्का हो कि ठीक है ड्रामा में है निमित्त, ये हमारे संबंध है, व्यवहार है, इन सब के साथ हमारा रोल है, और जिसको मुझे बहुत ही रूहानियत से, आत्मिक स्नेह से, कल्याण की भावना से चलाने हैं, लेकिन मुझे अंदर से ये भी पक्का हो, दो पाठ सदा हमें बुद्धि में रहे कि एक तो मेरा सर्वस्व बाबा है और बाकी सब कुछ निमित मात्र है। भले ये सब है मेरे साथी, दिन रात मुझे इनके साथ रहना है, जीना है, काम करना है, लेकिन मुझे अंदर से ये दो पाठ पक्के हो कि मेरा सर्वस्व एक बाबा है, बाकी सब कुछ निमित मात्र है। ये नहीं कि ज्ञान में चलते हैं लेकिन निमित मात्र बाबा और सब कुछ गृहस्थी, ठीक है निमित मात्र सुबह शाम आधा घंटा थोड़ा बहुत ज्ञान योग कर लिया, बाकी 22 घंटे उसी में लगे रहे, तो उन्हों का जीवन ऐसा हो जाता है कि निमित मात्र बाबा सर्वस्व गृहस्थी। लेकिन नहीं, सर्वस्व बाबा, और ये निमित्त मात्र है। और दूसरा पाठ, हमें ये पक्का हो जो दुनिया में भी लोग जानते हैं, लेकिन अब हम खुद को रोज याद कराएं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। कोई कितना भी प्यारा हो, सुख देने वाला हो, कोई किसके साथ जा नहीं सकता है। इसलिए सभी मेरे हैं और कोई किसी का नहीं है। ये दोनों बातें हमें सदा पक्की रखें। तो आप अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, अपने पति भाई बहन को भल प्यार से चलाएंगे, लेकिन वो अलौकिक प्यार होगा। उसमें दैहिक शारीरिक बात नहीं होगी। और मेरे अनुभव से प्रैक्टिकल एक बात मैं बताना चाहूंगी कि हमारी, हम दादियों से सीखें कि उनके मिलने की विधि सदा अलौकिक होती है, रूहानी दृष्टि से मिलते हैं, बाबा की याद के साथ मिलते हैं। लौकिक में कई बार हम लौकिक रूप से ज्यादा मिलते हैं, गले लगाएंगे, हाथ पकड़ेंगे, गोद में बिठाएंगे। मेरे हिसाब से बॉडी का टच अटैचमेंट बढ़ाता है, शारीरिक संपर्क कम से कम होना चाहिए। बच्चों को भी आप बिठाओ पास में, सामने प्यार से अच्छी बातें करें, लेकिन ज्यादा गले लगाना, गोद में बिठाना, ये सब चीजें अटैचमेंट बढ़ाती है। बल्कि अटैचमेंट है इसलिए हम ये करते हैं, वरना बाबा कहते ना, ये बच्चे भी ठाकुर है ना? उसको जैसे भक्ति में ठाकुर की पूजा करते हैं, ये चैतन्य ठाकुर है, छोटे बच्चे उस दिव्य भावना से देख। अगर हमारा लक्ष्य है कि हमें नष्टो मोहा बनना है लक्ष्य है, तो हाथ ऊपर करें, क्योंकि ये बातें बनना है तो है, वरना ये बात करने का कोई मीनिंग नहीं है, है ना? तो ये मेरा लक्ष्य हो कि सचमुच मुझे बनना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि अंते या मति सा एव गति, है ना? अटैच भी हो और हम ही धोखा खाए, क्या जरूरी? हमें माताओं के लिए बहुत, मुझे अंदर से रहम आता है कि एक तो उसके लिए मरती भी है और धोखा भी खाती है, क्या जरूरी है? जान भी लुटाए, मन भी लगा के रखे, और प्राप्ति क्या है, क्या जरूरी है? हम प्यार भी रखें और धोखा भी तो न खाएं कम से कम। ठीक है, हमें किसी से कोई वैर लेने की बात नहीं है कि इन्होंने हमें बहुत जन्मों से सताया है, दुख दिया है, धोखा दिया है, तो हम प्यारी ना करें, वो चीज मैं नहीं कह रही। पर बाबा ने जो रूहानी ढंग सिखाया है वो हमें अपनाना है, कि वो रूहानी प्यार, कल्याण का प्यार, और वो परख शक्ति, मुझे कहां तक किसके साथ कैसे चलना है, ये बहुत जरूरी। तो हम इन देह संबंधों में न्यारे और प्यारे रह सके। तीसरा चीज है वैभव और पदार्थ। चीजें, साधन, वस्तुएं, बाबा ने हमें कहा है भले हम सुख से रहें, व्यवस्थित रहे, कोई मुश्किल में, तकलीफ में रहने की बात नहीं है, लेकिन दो चीज परखना होगा हमें कि आवश्यक कहां तक है, और इच्छाएं कहां तक है। जरूरी है तो बाबा की कभी हमें ना नहीं, पर कई बार जरूरी नहीं है पर इच्छा है। जहां इच्छाएं हैं वहां हम पदार्थों पर अति में जाते हैं और आधारित होने लगते, समय अनुसार, शरीर के अनुसार, सेवा के अनुसार आवश्यक जो है वो हमें सब करना है, लेकिन इच्छा वो ना हो। आज समय के अनुसार हर साधन यज्ञ में है, हर सुविधाएं यज्ञ में है। हम दादियों को, बड़ों को देखते हैं ना, लेकिन स्थिति क्या है? कैसे भी अच्छी कार में बैठते हैं, कैसे भी अच्छे मकान में रहते हैं, लेकिन अंदर से तो वो अवस्था है ना कि एक बाबा दूसरा न कोई। तो ये अगर चीजें मेरी बुद्धि को भटकाती हैं, मन को बिखेरती हैं, तो वो अटैचमेंट है। इसलिए श्रीमत के अनुसार अपने जीवन की, शरीर की, समय की, सेवा की आवश्यकता के हिसाब से क्या क्या है वो हम करें, इच्छाएं ज्यादा ना। और उसके लिए मैं सदा ये महावाक्य याद रखती हूं कि अगर मुझे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो भौतिक इच्छाओं को सीमित करना चाहिए। भौतिक इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं भी मैं बढ़ाती जाऊं और मैं कहूं कि मुझे कर्मातीत बनना है, ये दो चीज नहीं हो सकती। क्यों बाबा कहता है अभी ये समय कौन सा है? संगम युग का समय है और उस हिसाब से आवश्यक क्या है, यही समय है मैं आत्मा को संपूर्ण बना सकती हूं, ये समय है जब मैं आत्मा को पूर्ण सतो प्रधान बना सकती, और युग और जन्म में ये चीजें नहीं कर सकेंगे हम, तो अभी मुझे प्रायोरिटी किसको दे दी। दिन रात जो धंधे में फंसे रहते हैं, धन साधन के लफड़ों में रहते हैं, वो क्या योग कर सकते हैं? वो सेवा में टाइम दे सकते नहीं। इसलिए उसको थोड़ा मुझे सीमित करना हो, तब मैं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी समय दे सकूंगी, सेवा के लिए भी समय दे सकूंगी। मुझे बाबा का ये भी महावाक्य याद रहता है कि अलौकिक जन्म लेकर लौकिक में ही फंसे रहे तो अलौकिक जन्म लेने का अर्थ क्या है? अलौकिक जन्म लेकर मैं लौकिक में ही फंसी रही तो अलौकिक जन्म लेने का अर्थ क्या है? ये अलौकिक जन्म, अलौकिक सेवा, अलौकिक पुरुषार्थ के लिए, अगर उसके लिए मैं समय धन नहीं दे सकती हूं तो फायदा क्या? तो यहां बैलेंस चाहिए कि कितना आपको लौकिक में लगाना चाहिए, कितना आपको अलौकिक में लगाना चाहिए। ये बैलेंस आपको डिटैच करेगा। और चौथी बात है हमारी अपनी लौकिक अलौकिक विशेषताएं, नाम मान शान और स्थान, जिसको आज भी बाबा ने कहा, आज की मुरली में था या कल की मुरली में, कि उसे दाता की देन समझो। चाहे मुझ आत्मा के अंदर कोई विशेषता है, सेवा के कारण, ज्ञान के कारण, योग के कारण, या कोई भी मेरी गुण कला विशेषता के कारण मेरा विशेष इस परिवार में या लौकिक परिवार में मेरा नाम है, मान है, शान है, उससे मुझे डिटैच रहना है। बेशक आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, महारथी बनना है, अनन्य सर्विसेबल होना है, लेकिन मुझे अंदर से हो कि ये बाबा के कारण अपने नाम मान शान स्थान विशेषता का मुझे अटैचमेंट ना हो और उसका ईगो भी ना हो। क्योंकि जब हमें अपनी विशेषता, अपनी सेवा, अपनी कला का अटैचमेंट होता है तो हम दूसरों को चांस नहीं देंगे, दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर हमारी निमित बहन जी दूसरे को आगे बढ़ाएंगी तो हमें जेलसी होगी। आज मैं निमित बनकर सेवा कर रही हूं तो कल दूसरे चार भी तो निमित बन सकते हैं ना। मैं ही करूं ऐसा तो सदा नहीं हो सकेगा, मैं भी करूं, ये भी करे, सब करें, मिलके करेंगे तब तो बाबा का काम पूरा होगा। तो कई बार हम अपनी कला विशेषता या सेवा से अटैच हो जाते हैं तो दूसरे को नहीं करने देते, वो भी नहीं। वहां चाहिए कि हम बालक सो मालिक बन के चले। मैं बाबा के कार्य के लिए मालिक जवाबदार हूं, मुझे एवर रेडी रहना है। लेकिन अगर मुझे निमित बड़ों से, यज्ञ से दूसरा कोई निमित बनता है तो कोई बात नहीं, मुझे बालक बन के चलना। हम योग्य हैं, बाबा हमें सेवा देगा ही, है ना? हमें निश्चिंत रहना है और निमित भाव रखना। और ये सब चीजों को हम क्रॉस करेंगे, ये चार चीजें मैंने बताई, इनको क्रॉस करेंगे तो हम आगे प्रैक्टिकल में अपना तन मन धन मन वचन कर्म गुण कला विशेषता ये सब बाबा के कार्य में खुले दिल से लगा सकेंगे। वरना कई बार ये देखने में आता है कि धन होते हुए भाग्य नहीं बना सकते हैं क्योंकि सेवा में सफल नहीं कर पाते, लोभ नहीं छूटता, मोह के कारण सेवा के लिए समय नहीं देते, लोभ के कारण सेवा में धन नहीं देते। जब इन चीजों का त्याग होगा तो हम सहज भाग्य बना सकेंगे, सेवा कर सकेंगे। इसलिए फाउंडेशन मैंने कहा कि जो बाबा का ज्ञान है, जो अवेयरनेस बाबा दिलाते हैं, जो जागृति और श्रेष्ठ स्मृति हमारे अंदर आती है, वो हमें शक्तिशाली बना के रखती। तो जितना मोह नष्ट होता है उतनी श्रेष्ठ स्मृति प्राप्त होती। अर्जुन ने गीता के अंत की स्टेज यही बताई है कि लास्ट में गीता ज्ञान सुनते सुनते अर्जुन भी नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा बन गए। जो अर्जुन मोह में फंसा हुआ था वही अर्जुन लास्ट में नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा बन गया। तो वो किसका यादगार, हमारा ही है कि सिर्फ ब्रह्मा बाबा का? तो अगर हम सब इतनी माताएं भाई बहने बाबा को हम ये बनकर दिखाएंगे तो बाबा का कार्य 18वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।